तब बताइए हमारे लिए अगला आदेश क्या है, अक्षिता जी ने पूछा। अखिल प्रताप अभी कुछ बोलते उसके पहले ही सामने जल रहा स्ट्रीट लाइट न जाने कैसे बंद हो गया था। सामने गेस्ट हाउस के बड़े से कैंपस में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। हालांकि गेस्ट हाउस की लाइट अभी भी जल रही थी, कॉरिडोर में भी रोशनी थी, पर सामने का नजारा देख पाना बंद हो गया था। अखिल प्रताप की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। इधर फोन पर दूसरी तरफ उनकी पत्नी डॉक्टर अक्षिता सिंह बुंदेला थीं। अक्षिता जी उनकी पत्नी होने के साथ साथ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और साथ ही प्रोफेसर भी थीं। इसके अलावा अक्षिता जी का परिवार भी कई पीढ़ियों से कोलकाता कालीमठ से जुड़ा हुआ था। इन दोनों की शादी काली माता के प्रधान गुरुजी के आशीर्वाद से हुई थी। अखिल प्रताप शादी तो करना नहीं चाहते थे, परंतु काली मठ के पीठाधीश्वर गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करते हुए गृहस्थ आश्रम में आ गए थे। अखिल प्रताप और अक्षिता जी की वाइब्स इतनी मैच करती थी कि दोनों ने एक साथ कई मामलों में काम किए थे और सफलता भी पाई थी। इसलिए जब अखिल प्रताप ने ऑफिशियली अपने साथियों की लिस्ट कन्फर्म की तो उसमें अक्षिता जी का भी नाम जोड़ दिया था, और ऑफिशियल मेल अब तक अक्षिता जी के पास पहुंच चुका था। इसको पढ़ने के तुरंत बाद उन्होंने प्रताप को कॉल किया था कि आखिर अखिल प्रताप क्या सोचकर राजगढ़ वापस गए हैं। वो केवल सहयोगी नहीं थीं जो कि ऑफिस का ऑर्डर आते ही सामान बांधना शुरू कर देतीं, बल्कि बीवी थीं, इसलिए उनको पूरी जानकारी चाहिए थी और ये उनका अधिकार था। हम क्या आपको आदेश दें, हम तो खुद आपके आदेश के गुलाम हैं, अखिल प्रताप भी पुराने रंग में लौटते हुए बोले। हाँ, तभी तो एक तड़कता भड़कता मेल अभी अभी हमें ऑफिशियल एड्रेस से मिला है कि कल किसी भी तरह से राजगढ़ उपस्थित होना है, अक्षिता जी ने कहा। बहुत कुछ है जो आपसे शेयर करना है, पर फोन पर करना सही नहीं रहेगा, मिलकर आमने सामने बातें करें, अखिल प्रताप ने इधर उधर देखते हुए कहा। उन्हें कॉरिडोर में किसी के कदमों की आहट मिली थी। दूसरे, वो समझ रहे थे कि यहाँ पर इस तरह से खड़े होकर इस मैटर पर बातें करना भी सही नहीं है। राजगढ़ वाले किस तरह से उस महल से भय खाते थे ये उनसे छुपा हुआ नहीं था। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, पर मैं अद्विक प्रताप को छोड़कर नहीं आ सकती, उनकी तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं है, कुछ सोचते हुए अक्षिता जी ने कहा। साथ लेकर आइए, अखिल प्रताप बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में बोले। क्या, अक्षिता जी को तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ, लेकर आइए, उनका घर है, उनका देश, उनकी जमीन, कितने दिनों तक हम उन्हें यहाँ से दूर रख सकते हैं, जाने अखिल प्रताप क्या सोच बैठे थे, पर अक्षिता जी भी कुछ नहीं बोली, जैसे मौन में ही उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी। दो चार बातें अपने बेटे के संदर्भ में करके उन्होंने फोन ड्रॉप कर दिया। वो अंधेरे में दूर कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। उनका इरादा आज रात ही अपना काम शुरू करने का था। पूरा राजगढ़ का नक्शा तो उनके दिमाग में बैठा हुआ था, इस कारण इस अंधेरे में भी वो दिशा से अनुमान लगा रहे थे कि राजगढ़ का पुराना पैलेस और राजगढ़ का नया पैलेस जिस वक्त वो यहाँ खड़े हैं वहाँ से कितनी कितनी दूरी पर होगा और किस दिशा में होगा। तभी गेस्ट हाउस का लड़का उनके पास आया। सर, सामान रख दिया, सब कुछ अरेंज कर दिया है, आप अभी क्या लेंगे, डिनर का अरेंजमेंट किया जाए या फिर चाय कॉफी ठंडा गर्म? डिनर आधे घंटे के बाद लेंगे, अखिल प्रताप अपनी घड़ी देखते हुए कहा। फिलहाल में तो तुम एक कप चाय पिला दो, अखिल प्रताप लड़के की तरफ मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले। कैसी चाय सर, ठंडी या फिर गर्म, लड़के ने धीरे से पूछा। लड़के की बातों का मतलब समझकर अखिल प्रताप ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। लड़का शायद अभी अभी जॉब पर नया आया था, इसलिए उसकी उम्र मुश्किल से 19 साल की थी। अखिल प्रताप के औरा से घबरा गया। मतलब सर, मौसम इतना ठंडा है, उससे कुछ कहते हुए नहीं बन रहा था, क्योंकि गेस्ट हाउस में आने वाले जो सरकारी अधिकारी होते थे वो तो यहाँ पर रात में जमकर पार्टी करते थे, तो फिर उसने ऐसा क्या गलत पूछ लिया जो कि ये सर इतना खतरनाक लुक दे रहे थे। मौसम ठंडा है इसलिए तो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय चाहिए, मेरे कमरे में लेकर आओ। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, खाना बिल्कुल साफ, सात्विक और वेजिटेरियन बनना चाहिए। कल शाम तक तुम लोग इस चीज को देख लो, परसों सुबह से हमारी टीम सारी चीजों को अपने हैंडओवर में ले लेगी, अखिल प्रताप बोले। जी सर, लड़का सर हिलाते हुए वहां से अखिल प्रताप के ऑर्डर के अनुसार केटरिंग में बताने के लिए चल गया। तो अखिल प्रताप भी यहां से जाने से पहले एक बार फिर पीछे मुड़कर इस दिशा की तरफ देखने लगे। तभी अचानक से आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी। इस बिजली की चमक इतनी तेज थी कि उसने आसपास के कई किलोमीटर के एरिया को रोशन कर दिया था। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड तक चमकने वाली इस बिजली में अखिल प्रताप ने अपनी आंखों के सामने राजगढ़ के पुराने श्रापित पैलेस को देखा। ये बिजली सीधे उसी पैलेस के सामने या फिर उससे कुछ दूर खड़े किसी हरे पेड़ पर गिरी थी, जिसके कारण वो इस समय आग की लपटों से घिरा हुआ चल रहा था। बहुत कुछ जला लिया तुमने और बहुत कुछ निगल गई तुम, अगर बरसों से इस प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई तुम वहां पर खड़ी हो तो एक आग अपने सीने में भी कई जन्मों से जलाए हुए हम यहां पर खड़े हैं। अब समय आ गया है आमने सामने दो दो हाथ करने का, देखते हैं किसके अंदर कितनी आग है। अखिल प्रताप के होठों पर एक मीनिंगफुल मुस्कुराहट खेल गई थी। हर हर महादेव।